बाबा ने कितनी मेहरबानी की है, गीत के शब्द कितने प्यारे थे, सबके दिल से बाबा के प्रति इतना प्यार उमड़ता है। बाबा ने हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को कितना संवार दिया, क्या थे क्या बना दिया। दिल ही दिल में बाबा के प्रति प्यार उमड़ता है। कैसी जिंदगी थी, किस प्रकार से जी रहे थे और बाबा ने जीना सिखा दिया। इसलिए हम सभी दिल से बाबा को प्यार करते हैं और ये प्यार करना ही बाबा की याद है। ऐसी याद में जो रहते हैं उनकी क्या निशानियां होंगी, खुश रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे। और जो याद में रहते हैं उनके द्वारा जो शक्तिशाली प्रकंपन निकलते हैं, जो वाइब्रेशन फैलता है, तो बाबा की याद में रहने से शांति और पवित्रता के प्रकंपन वायुमंडल में फैलते हैं। खुद की भी सेवा होती है और दूर बैठी हुई आत्माओं को भी शक्ति मिलती है। बाबा की याद में रहना ही सेवा का सबसे अच्छा साधन है। सेवा तो सेवाधारी सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर सेवा करते बाबा की याद है तो मनसा द्वारा भी श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने की सेवा करते हैं। बाबा ने इस बार मुरली में हम सबको ये सेवा दी है कि अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वाइब्रेशन बनाने की सेवा करो। ये वृत्ति की सेवा बहुत फास्ट गति की सेवा है। जैसे मधुबन का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, यहाँ आने वाले क्या अनुभव करते हैं, बहुत अच्छा वायुमंडल है, बहुत शांति है, बहुत प्यार है, नेचुरल है, अपने आप आते ही उन्हें अनुभव होने लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये तो ब्रह्मा बाप की तपस्या के वाइब्रेशन है, अनन्य बच्चों की वृत्तियों के वाइब्रेशन है। किन वृत्तियों से ऐसा वाइब्रेशन बना, श्रेष्ठ वृत्तियां किसको कहा जाता है, क्योंकि वृत्तियां बनती हैं, कैसे बनती हैं? शुभ भावना एक वृत्ति है, वो वृत्ति बनी कैसे? जैसा चिंतन चलता है, जैसे संकल्प चलते हैं, जैसा दृष्टिकोण होता है, वैसी हमारी अंदर की वृत्तियां बनती जाती हैं। और वृत्तियां जब कर्म में आ जाती हैं तो संस्कार का रूप ले लेती है। जैसा सोचते हैं, एक दूसरे को देख करके जैसे विचार चलते हैं, उन विचारों का अंदर अंदर अगर चिंतन चलता रहता है तो वृत्ति बन जाती है। और उस वृत्ति से, उसी दृष्टिकोण से हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, ये ऐसा है, ये फलाना ऐसा है, ये ऐसे करता है। तो बाबा की किन वृत्तियों से, जैसे दादी जी की वृत्ति से बाबा ने एक विशेषता दादी की बताई कि दादी की वृत्ति से इतना सारा ब्राह्मण परिवार कंट्रोल में रहा। कौन सी वृत्ति रही दादी की? शुभ भावना की वृत्ति में सबकी कमियों को समाया, कोई की कमी को फैलाया नहीं, परिवार में किसी की कमी कोई देख ली तो उसको समा लिया कि परिवार है, चलो आज है कल ठीक हो जाएगा, उस कमी का वर्णन चिंतन नहीं किया। तो बाबा ने दादी जी की विशेषता सुनाई ना कि दादी की वृत्ति से सारा ब्राह्मण परिवार कंट्रोल में रहा, सब एक होकर के रहे, वो वृत्ति से वायुमंडल बना, वाइब्रेशन फैले। तो वो शुभ भावनाएं जो अंदर थी, कि किसी की कमी को नहीं देखना, किसी की कमी का वर्णन नहीं करना, अगर कुछ है भी तो ये परिवार की कमी माना अपनी कमी है। तो इस वृत्ति से वायुमंडल अच्छा बन गया। तो बाबा भी कहता है कि बाबा की जो ब्रह्मा बाबा की तपस्या है उसके वाइब्रेशन यहाँ पर है। बाबा कैसे रहा, कैसे चला, कैसे सोचा, क्या क्या विचार आ रहे हैं बाबा की चली, उनके आधार से बाबा के घर में बाबा की चरित्र भूमि, बाबा की कर्म भूमि, बाबा की सेवा भूमि, ये मधुबन जो है उसका पावरफुल वायुमंडल बन गया। और बाबा भी कहता है कि जिस स्थान पर तुम रहते हो, चाहे सेंटर पर रहते हो, चाहे घरों पर रहते हो, जहां भी रहते हो वहां का वायुमंडल इतना शक्तिशाली बनाओ, वृत्ति से बनाओ। तो वो श्रेष्ठ वृत्तियां क्या हैं? विचार करना है? बताना फिर क्या है श्रेष्ठ वृत्तियां जिनको बाबा कहता है, उनसे वाइब्रेशन बनता है, वायुमंडल बनता है। ये दो घड़ी में पांचों ड्रिल हो सकती हैं। जो अभी गीत सुन रहे थे कि प्रेम से दो घड़ी बाबा को याद कीजिए, इस दो घड़ी में जो पांच ड्रिल बाबा ने सिखाई याद है सबको, करते हो कि नहीं? क्योंकि बाबा कह दिया और हम भूल गए, ऐसा तो नहीं करते हो? सच बोलो, करते हो? अच्छा, क्योंकि बाबा ने तो बहुत अच्छी ड्रिल बार बार कराई है। सेकंड में परम धाम चले जाओ, निराकारी स्थिति का अभ्यास करो, फिर आकारी स्थिति में फरिश्ता स्थिति में आ जाओ, और फरिश्ता स्थिति में आकर के फिर अपने पूज्य स्वरूप का साक्षात्कार करो। पूज्य स्वरूप कौन सा? द्वापर में जो आप सभी, हम सभी इष्ट देव देवियों के रूप में पूजे जाते हैं, फरिश्ता बनेंगे तो वो इष्ट देव और देवियों का साक्षात्कार करा सकेंगे। तो बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन में आकर फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर फिर पूज्य स्वरूप का साक्षात्कार करो, और उसके बाद ब्राह्मण स्वरूप में आ जाओ। कितना भाग्य है, कितना श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है। और फिर ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्मा, देवता स्वरूप में स्थित होने से क्या होगा? जो दिव्य गुण है, जो देवताएं, आत्मा और शरीर जो डबल पावन है, जो उनकी रॉयल्टी है, जो उनकी प्योरिटी है, वो संस्कारों में इमर्ज करो। तो ये पांचों स्वरूपों की ड्रिल बार बार करने से आत्मा के अंदर वो संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, आत्मा अपने आप इस देह से डिटैच हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा ये बार बार करो, जब समय मिले ना, सोने जाते हो बिस्तर पर, पांच स्वरूप की ड्रिल करके सो जाओ, आंख खुले जल्दी जल्दी उठने जाओ बिस्तर से, बस उठ करके एकदम जागृत अवस्था में बाबा के पास पहुंचो, निराकारी वतन में। फिर आकारी वतन में आ जाओ लाइट की ड्रेस में, फिर साक्षात्कार करो फरिश्ता बन करके देवी देवता के रूप में, फिर ब्राह्मण स्वरूप में आ जाओ, फिर देवता स्वरूप में आ जाओ। तो अगर ये ड्रिल बार बार करें ना, दिन में कम से कम 5-7 बार, तो अभ्यास हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, बार बार उस अभ्यास में चले जाएंगे। तो हमारा जो विषय चल रहा था उससे संबंधित बात, बाबा की कौन सी वृत्तियां इस वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही हैं, जिन्हें हम सबको फॉलो करना, क्योंकि हम भी बाबा के यज्ञ में रह रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, और जहां भी रहते हैं उस वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा की वृत्तियों को कॉपी करना पड़ेगा। क्या थी बाबा की वृत्तियां? जानकारी, इस वायुमंडल को जो चार्ज किया, इस वायुमंडल को जो शक्तिशाली बनाया, सबसे पहली वृत्ति थी त्याग वृत्ति। वृत्तियों के अंदर नाम, मान, शान, महिमा, बाबा को साकार में कुछ नहीं चाहिए, अपने रहने के लिए स्थान भी नहीं चाहिए, वही ठीक है, झोपड़ी वही छोटी कुटिया ठीक है, बच्चे रहे अच्छे महल बनते हैं। ये पहले हवाई महल बना, दूसरे भवन बने बाबा के सामने, बाबा को ऑफर किया बच्चों ने, बाबा आप वहाँ रहो, नया भवन बनाए, तो बाबा ने क्या कहा, नहीं बच्चे मैं तो इसी कुटिया में रहूंगा, ये पुरानी भवन में, पुराने मकान में ही रहूंगा, बच्चों के लिए बाबा ने बनवाया है। तो त्याग वृत्ति, अगर कभी कोई बाबा की महिमा करे तो बाबा कहे बच्चे मैंने कुछ नहीं किया, या कहेगा बच्चों ने किया, या कहेगा बाबा ने करा लिया। इतनी त्याग वृत्ति थी, उस त्याग वृत्ति से वायुमंडल बन गया, वाइब्रेशन फैल गए, कोई की इच्छा जागृत ही ना हो, मेरी महिमा हो, मेरा नाम हो, मैंने कुछ किया, कोई मुझे पूछे, बाबा कहता ये श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है। वृत्ति श्रेष्ठ वो है जिसमें खुद का त्याग, खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, सेवा के लिए सब कुछ है। तो अंदर अगर हम कहीं पर भी रहते हैं, जैसे विकारों का त्याग किया, बुराइयों का त्याग किया, ऐसे साधन और सुविधाओं का त्याग किया, वृत्ति से भी मान सान नाम महिमा पोजीशन पोस्ट, इसका भी अंदर से त्याग हो, ये भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई करता भी है, कोई प्रशंसा करता भी, आज बाबा ने कहा ना स्लोगन के अंदर, अगर प्रशंसा के आधार पर आप प्रसन्न रह रहे हो तो क्या होगा, प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसलिए प्रसन्न रहने के लिए प्रशंसा की इच्छा नहीं रखना। अगर हमारी कोई महिमा कर दे और मैं खुशी में फूल जाऊं, बहुत खुश हो जाऊं, तो कोई ग्लानी करेगा, कोई ऐसे बहुत शब्द बोलेगा, तो हमारी खुशी नष्ट हो जाएगी। इसलिए त्याग वृत्ति, प्रशंसा की भी, महिमा सुनने का भी त्याग, मुझे नहीं अपनी महिमा करानी है, बाबा ने मुझे बहुत ऊंचा सम्मान दिया है, खुद को क्या से क्या बना दिया। अगर कोई इतने नशे में रहे ना, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया है, कितना ऊंचे सम्मान पर बिठाया, तुम्हें मेरे पूर्वज हो, तुम्हें मेरे इष्ट हो, तुम्हें सब कुछ हो, सब टाइटल दे दिए, अगर उस सम्मान में हम रहे तो कोई की भी मान सान, कोई भी प्रकार की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहेगी। इसलिए आंतरिक त्याग वृत्ति से वायुमंडल बना। दूसरी वृत्ति बाबा की क्या थी, सबके प्रति दाता, दाता देने वाला, मैं किसी से कुछ लूं नहीं, लेने की इच्छा नहीं रखी। कोई कैसा भी बच्चा आ जाए, गरीब आए या साहूकार आए, कोई भी प्रकार से कोई बच्चा आए, ये नहीं ये कुछ करे यज्ञ के अंदर, ये कुछ दे, नहीं, आया है बच्चा भरपूर होकर के जाए, ये लेकर के कुछ जाए, वर्षा लेकर के जाए, अधिकार लेकर के जाए, कुछ अच्छे अनुभव करके जाए। बाबा की वृत्तियों में ये दातापन का एक निजी संस्कार रहा, और उस दातापन के संस्कार के कारण यहाँ का वायुमंडल शक्तिशाली है। अगर यहाँ लेना शुरू कर दें सभी, देने की बजाय मांगना शुरू कर दें, तो कौन आएगा, पसंद करेगा आना? इसलिए कोई किसी से कुछ मांग नहीं सकता है, नियम नहीं है मांगना, अगर मांगता है तो यज्ञ में रह करके वो चाहता है, वायुमंडल को चार्ज होने नहीं देता। शक्तिशाली वायुमंडल में वो विघन रूप बनता है। इसलिए दातापन का संस्कार, जैसे बाबा को अगर कोई चीज कोई दे के गया तो बाबा ने क्या किया, सुना होगा बाबा की कहानियों में, बाबा को कोई अच्छे कपड़े कभी कभी ले आती थी माताएं, कोई अच्छे स्वेटर ले आई, साल ले आई, बाबा आप यूज करना, बाबा ने कहा बच्चे रख दो, और कोई बच्चा आ गया बाबा के सामने, बाबा बुलाया और उसको उसी समय दे दिया, चलो तुम उड़ो तुम पहनो। इतना अंदर से स्थूल चीजों में भी दातापन, और अंदर से ये अविनाशी वर्षा बाबा से ले, ये लेने के लिए आया, देने के लिए नहीं। इसलिए गरीब बच्चा आ गया तो उस गरीब बच्चे को भी उसी नजर से देखा, बीज बोने का ज्ञान दिया, ऐसे नहीं कुछ नहीं करना तुमको, सफल करो, बीज बो, सिर्फ बोझ नहीं चढ़ाना, वो ज्ञान दिया, समझ दी, लेकिन मांगा नहीं कुछ भी, कुछ चाहिए नहीं, देने की भावना रखी। बच्चा अगर एक बीज बोएगा तो उसको पदम मिलेगा, ये भी दातापन की भावना, लेने की भावना नहीं है कि कोई 5 रुपया दे जाए ये हमारी इच्छा हो, लेकिन अगर वो कर्म का ज्ञान जानता है तो बाबा क्या ज्ञान देता है कि अगर तुम 5 रुपया भी 10 रुपया भी यज्ञ में डालोगे, जिससे सेवा की, जिससे पालना ली, जिससे तुम्हारी जीवन इतनी श्रेष्ठ बनी, अगर पालना ही लेते रहे, बोझ चढ़ा लिया, गरीब पैसा, गरीबों का पैसा यज्ञ में आया, दान का पैसा आया, और तुमने खाया और सेवा नहीं की, रिटर्न नहीं दिया, तो क्या होगा? वो चढ़ जाएगा ना। किसी ने दिया और हमने ऐसे खत्म कर दिया, उड़ा दिया। यज्ञ में रह करके भी कईयों की स्थिति नहीं बनती, उसका यही कारण है कि अगर वो यज्ञ में खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, जितनी पालना ले रहे हैं उसका रिटर्न उतना नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? खुशी रहेगी? बोझ चढ़ रहा है, और बोझ वाली आत्मा हल्केपन का अनुभव ही नहीं कर पाती, वो लाइट रह ही नहीं सकती, खुशी का अनुभव ही नहीं कर सकती। इसलिए बाबा कहता है इसको बहुत अंदर जा करके देखो कि जितना मुझे मिल रहा है उतना मैं रिटर्न कर रहा हूँ। बाबा आराम से सब बातों का ध्यान रखता है, खिलाता है, पिलाता है, हर प्रकार के साधन सुविधाएं सब चीजें उपलब्ध कराई हैं, और अगर उसके रिटर्न में उसके कई गुना हमने सेवा नहीं दी तो बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए हम सभी मास्टर दाता की वृत्ति बना लें कि जो आए उसको कुछ न कुछ मेरे से मिले। जब बाबा ने कहा ना बच्चे 15 दिन तक दुआएं दो, दुआएं लो, ध्यान है ना सबको, कम से कम ये अभ्यास करो, तो दुआ उसी ही मिलती है जो कुछ देता है, ऐसे नहीं दुआ मिलती है। आज आशीर्वाद बाबा ने कहा, बाबा की आशीर्वाद लो। आशीर्वाद किसे मिली? जिसने पावन बनने का दृढ़ संकल्प ले लिया, कुछ किया तो उसको मिला, ऐसे नहीं मिल गया। मनोकामना उसकी काम धेनु माँ पूरी करेगी, लेकिन अगर वो पवित्रता का व्रत लेता है तो शर्त है, ऐसे नहीं पूरी कर देगी, जो आया सबको दे देंगे। तो बाबा ने हम सबके व्रत दातापन की बहुत ऊंची वृत्तियां रखी और सबको दिया, मान दिया, शान दिया, अपने से आगे बढ़ाया, और सबसे बड़ी एक वृत्ति थी ये सब मेरे हैं, अपनेपन की वृत्ति। अपने पन की वृत्ति से हर एक बच्चे के दिल से निकलता है मेरा बाबा, ये मेरे बच्चे हैं, इन्होंने बाबा कहा है। अभी तक भी बाबा कहता है, भले वो लास्ट नंबर है, 99 गलतियां करता है, लेकिन ये विशेषता अगर है, मेरा बाबा दिल से कहता है एक विशेषता, तो भी बाबा उसको मीठे मीठे बच्चे कहकर याद प्यार देता, कड़वे बच्चे कहकर के याद प्यार नहीं देता। ऐसे नहीं कड़वे बच्चों को छोड़ करके फिर मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, क्या काम मुरली के अंदर, ऐसा नहीं कहता, सबको कहता मीठे मीठे बच्चे, जानता है कहने से भी कुछ न कुछ बन जाएंगे। इसलिए इस भावना से, ऊंची वृत्ति से, मेरे बच्चे हैं, मीठे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, सिकीलधे बच्चे हैं, इस ऊंची भावना से अपनेपन की भासना दे दी। और जहां अपनापन है, जैसे दादियों को हम सभी क्यों कहते हैं, मेरी दादी, अपनी दादी, क्यों निकलता है? क्योंकि उन्होंने अपनेपन की भासना दी, अपना समझा और अपना समझ करके हम सबको प्यार से पाला है, तब हमारे दिल से अपनी दादी निकलता है, मेरा बाबा, मेरी दादी। तो अगर अपनेपन की भावना है, परिवार में अपनापन आ जाए, अपनत्व आ जाए, मेरापन नहीं, मेरा तो मोह हो जाएगा, मोह नहीं चाहिए लेकिन अपनापन जरूर चाहिए। अपनापन माना सदा सहयोग, सदा स्नेह, जो आवश्यक है उसको मदद करें, साथ दें, उसका नाम है अपनापन। ऐसे नहीं हम अपने हैं, सब अपने हैं, और जब साथ और सहयोग की जरूरत पड़े तो किनारा कर लें, छोड़ दें, कहें छोड़ो इसको, क्या करना, जरूरत के समय मदद करें तो दुआएं मिलेंगी। इसलिए अपनेपन की बहुत ऊंची भावना रखी बाबा ने, सब बच्चों को फील करा दिया, मेरा, मेरे बच्चे हैं। और जब अपनापन होता है, जहां अपनत्व होता है, वहां किसी की कमियों का वर्णन नहीं किया जाता। परिवार में अपने बच्चों की कमियां माँ बाहर सुनाती है, जाकर सुनाती है कोई, अगर कोई भूल भी करके बच्चा आ जाए, कोई बहुत बड़ी भूल भी करके आ जाए, माँ को पता चले तो सोचे कि बाप को भी न बताया जाए, तो संभालो। ऐसा तो नहीं पड़ोसियों को जाके सुना के आएगी मेरे बच्चे ये करके आए, उसको समाएगी। तो समाने की वृत्ति मम्मा बाबा में, दादियों में अभी तक भी है, अपने भाई बहनों की, अपने बड़ों की, कोई कितनी भी बड़ी बात लेकर के जाए उनको समा लेंगे, और समाने के कारण सहज उनमें परिवर्तन आ गया। ऐसे नहीं समा लिया तो और ज्यादा फैल गई वो कमियां, विस्तार को हो गई, नहीं, समा करके उनको शिक्षा जरूर दिया, समय देख करके दिया। तो एक शिक्षा देने के साथ एक जो क्षमा भावना की वृत्ति है, क्षमा कर देना, बाबा ने भी कहा बच्चे क्षमा कर दो, कोई भी भूल करके आता तुम क्षमा करो। ये बहुत ऊंची वृत्ति है और बहुत बड़े दिल वाले की है, ऐसे कोई ऐसी वृत्ति नहीं रख सकता है। कोई गलती करके मेरे सामने आया और मैं उसको कहूं कोई बात नहीं तुमने सॉरी किया, रियलाइज किया, माफ कर दूं, एक क्षमा वृत्ति के अंदर अपनापन है। अगर उसके अंदर से आए चलो कोई बात नहीं आज किया है सुधर जाएगा, बाबा जैसे हम सबको क्षमा कर रहा है, कोई कुछ भी करता है इतनी शिक्षाएं देते हुए भी अगर कोई गलती कर लेता तो भी बाबा उसको निग्लेक्ट नहीं करता, उसको निकाल नहीं देता, उसको कोई डांट नहीं लगा देता है, बच्चे कोई बात नहीं बीती को बिंदी लगा दो हो गई, क्षमा कर देता और आगे के लिए कहता बच्चे सावधान रहो, बोलना हो, माया गफलत न करा दे, अलबेले नहीं रहो, बहुत सावधानियां देता है लेकिन क्षमा करके देता है। पहले उसको भुलाने की कोशिश करता है कहीं ये रिपीट न भी करे मेरे से हो गया, भूल जा बच्चे सच्ची दिल से तुमने सुनाया महसूस किया भी भूल जाओ। तो एक क्षमा करने की वृत्ति बाबा के अंदर से हम बच्चों के प्रति रही है, अपनेपन की वृत्ति रही है, समाने की वृत्ति रही है, दातापन की वृत्ति रही है। एक हर आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्त हो, इनका कल्याण हो, इनका भला हो, उस वृत्ति से सबने अपना महसूस किया बाबा अपना है। हम सबको भी बाबा भी इन बातों में समान बनाना चाहता है कि मेरे बच्चे जो इस स्थान पर रहते हैं, जो आते हैं, सेवा करते हैं, कभी भी वृत्तियों में स्वार्थ की न हो, निस्वार्थ वृत्ति हो, स्वार्थ न हो, मुझे मिल जाए, मेरे प्रति हो, सब कुछ मुझे ही मिल जाए, सब कुछ सबको प्राप्त नहीं हो सकता। किसी के भाग्य से भेंट करके कोई लेना चाहे कि इसको इतना मिला मेरे को भी इतना मिले, बाबा कहता इस वृत्ति से सेवा नहीं करो, सेवा बहुत निस्वार्थ वृत्ति से करो, अपने आप सेवा का फल मेवा मिलना ही है। अगर दिल से सेवा की है तो रिटर्न में बाबा मेवा देगा ही, मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन कोई स्वार्थ रख करके किसी की सेवा करे, यज्ञ में कोई स्वार्थ लेकर के आप सेवा के लिए आओ, है कोई स्वार्थ क्या? स्वार्थ से आए क्या? ये तो स्वार्थ है ना, बाबा से मिलेंगे कि नहीं, ये तो अच्छा स्वार्थ है, तो होना भी चाहिए। लेकिन कोई चीज मिल जाएगी, कोई इसका रिटर्न मिल जाएगा, जैसे लोग दुनिया में जाते हैं कहीं भी सेवा करने तो कुछ न कुछ सेवा के पीछे लक्ष्य होता है कि इसका रिटर्न ये मिलेगा। बाबा तो बच्चों को सेवा का कई गुना रिटर्न दे रहा है, उसी समय प्रत्यक्ष फल मिलती है, खुशी, योग सहज लग जाता है, बाबा से बहुत शक्ति मिलती है, दुआएं मिलती हैं, पुण्य का खाता जमा होता है, ये तो रिटर्न दे रहा है, गुप्त रीति से मिल रहा है। और कर्म इंद्रियां पावन बन रही है, सबसे बड़ी बात है जो सेवा कर रहे हैं दिल से, जो कर्म इंद्रियों से सेवा की जा रही है, योग लगाने में मेहनत है लेकिन अगर सेवा अच्छी तरह से प्यार से की, यज्ञ की सेवा समझ करके, यज्ञ की सेवा की अपना समझ करके की, ड्यूटी समझ करके नहीं, कई नौकर की तरह ड्यूटी बजा रहे हैं, किया 6 घंटा 8 घंटा वह ड्यूटी है, उसके बाद बोलो कहीं हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, वो ड्यूटी समझ करके करने वाला वो यज्ञ का बच्चा नहीं है। यज्ञ का बच्चा तो ड्यूटी नहीं समझता, वो जो सेवा मिले, जब सेवा मिले, सदा सेवा पर हाजी हाजिर, क्योंकि सेवा से कर्म इंद्रियां पावन बन रही है। जिन कर्म इंद्रियों से पाप हुए, उल्टे कर्म हुए, वही कर्म इंद्रियां यज्ञ की सेवा करने से पावन बन रही है। तो बाबा की वृत्तियों में रहा कि मैं यज्ञ का रक्षक हूं, ब्रह्मा बाबा की वृत्ति में था यज्ञ रक्षक हूं, और सदा ये वृत्ति में रखा जो कर्म मैं करूंगा मेरे को देखकर सब देखेंगे, करेंगे, सब सीखेंगे, ये वृत्ति के अंदर बाबा की था। इसलिए बाबा ने छोटे से छोटा काम पहले खुद किया, बच्चों को नहीं कहा, आप बाबा की कहानियां हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा, एक बार क्या हुआ एक सब्जी का ट्रक आ गया, बाबा की कहानी में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे किताब में। तो दोपहर का समय था, बाबा 3 बजे के बाद भोजन करके सैर कर रहे थे तो सब्जी आई, और बहुत सब्जी आती थी, पार्टियां जब आने वाली होती है तो सब्जी ज्यादा आती, तो बाबा ने देखा दोपहर का समय है कौन उतारेगा, तो बाबा बहनों के साथ, दो तीन बहनें साथ में होती थी, चक्कर लगा रहे थे। बाबा ने कहा बच्ची ठहरो, मैं उतार देता हूँ। और बाबा फटाफट चढ़ गया गाड़ी पर और सामान उतारने लगा अपने आप हाथ से। तो सब एक ने देखा, दूसरे ने देखा, चूंचू हो गई, बाबा उतारा, बाबा उतारा। तो चारों तरफ से बच्चे जो एक दूसरे सो भी रहे थे उनको भी जगा दिया और भाग करके आ गए। बाबा नहीं नहीं आपने उतारो, मैं उतारूंगा। तो कैसे सिखाया बाबा ने? ऐसे नहीं कहा कि बच्चों को जगा के ले आओ, अभी अभी खाली करना है, नहीं। बाबा ने खुद किया और बच्चों ने फटाफट फॉलो कर लिया। हर कर्म में बाबा ने करके सिखाया, कह के नहीं। अगर हम इस वायुमंडल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो दूसरों को कहने के पहले क्या करें? खुद करें। और जो खुद करेगा वो दूसरों को अपने आप सिखाएगा। अगर खुद अमृत वेला योग कर रहा है तो दूसरों को कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप लोग कहेंगे ये भी देखो करता है, इतना पुराना भी करता है, ये क्लास में जा रहा है अमृत वेले, तो दूसरों को कहने की क्या जरूरत है, वो अपने आप सीखेगा। अरे इतना सब करते हुए भी देखो समय निकाल करके क्लास में जा रहा है, उसको फॉलो करेंगे लोग। तो जैसा कर्म मैं करूंगा उससे दूसरे अपने आप प्रेरित होंगे, सीख लेंगे, उससे प्रेरणा प्राप्त होगी। इसलिए वृत्तियों में रहे कि मैं पहले करूं फिर दूसरों को कहूं, कहने की भी जरूरत नहीं है, अगर मैं कर रहा हूं तो अपने आप लोग सीख जाएंगे। तो बाबा की क्या क्या वृत्तियां थी, मेरा तो ये चिंतन चल रहा था कि कम से कम 16 बाबा की ऐसी वृत्तियां, जिस वृत्तियों से आज यज्ञ का किला मजबूत हुआ है, आज यज्ञ का जो फाउंडेशन मजबूत है, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, कोई कितने भी विघ्न डाले, कुछ भी पहाड़ जैसी परिस्थिति भी आ जाए, लेकिन कोई हिला सका न हिला सकता है, फाउंडेशन किसने डाला? स्वयं बाबा ने, आदि देव पिता ने तपस्या के द्वारा वाइब्रेशन से बना दिए, विघ्न ठहर नहीं सकता, कारण रह नहीं सकता। तो बाबा की तपस्या से जो वायुमंडल बना है, जहाँ तपस्या का वायुमंडल है, पवित्रता का वायुमंडल है, वो वृत्तियों से बना है, पवित्र वृत्तियों से, अच्छे विचारों से, शुद्ध संकल्पों से, सबका कल्याण हो, सत्वगुणी वृत्तियों से। ये भावना अंदर बन गई, सब बच्चों का भला हो, सबका कल्याण हो, जो इस धरणी में आए उनका भला हो जाए। तो बाबा ने ऐसी श्रेष्ठ वृत्तियां सदा रखी, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, उसने ये कर लिया, कभी उसका वर्णन और चिंतन नहीं किया। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके अपनी वृत्तियों को शुद्ध और श्रेष्ठ बना लेना, ये है वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना। लेकिन वृत्तियां चेंज तब होंगी, कब चेंज होंगी? अच्छा बताओ, वृत्तियां चेंज कैसे होती है? दृष्टि में परिवर्तन आना, श्रेष्ठ भावना से। हमारी वृत्तियां चेंज होंगी व्रत रखने से। अगर व्रत ले लो कोई भी चीज का, व्रत लेते ना, जैसे भक्ति के अंदर व्रत ले लिया तो क्या होगा? खाना पीना सब होते हुए भी आसक्ति नहीं जाएगी, ध्यान नहीं जाएगा कि खा लूं ये पी लूं, व्रत लिया है। और उसको भावना अगर संकल्प में भी ख्याल आ जाए खाने का, तो ये पाप हो गया, व्रत टूट गया मेरा, संकल्प भी क्यों आया? व्रत में इतने पक्के रहते हैं कि वो व्रत के आगे कुछ भी हो जाए, कोई अच्छी चीज, अच्छे से चीज आ जाए सामने, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, व्रत लिया हुआ है। हम सब भी अगर अपनी वृत्तियों को चेंज करना चाहते हैं, कोई आसक्ति वाली वृत्ति है, कोई राग द्वेष ईर्ष्या वाली वृत्ति है, कोई नफरत और घृणा वाली वृत्ति है, कोई अवगुण दृष्टि की वृत्ति है, कोई स्वार्थ की वृत्ति है, कोई दैहिक दृष्टि और वृत्ति है, देह को देखने की, देह अभिमान में रहने की, देह के आकर्षण की, तो बाबा कहता व्रत लो, एक बाबा दूसरा न कोई, और व्रत के आधार से अपनी वृत्तियों को चेंज कर लो। बाबा मैं आपका हूँ, मेरा तो एक आप दूसरा न कोई, एक बल और एक भरोसा, ऐसा व्रत ले लो। तुम्ही को देखूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बातें करूं। अगर हम सब ऐसे ऐसे संकल्प ले लें, व्रत ले लें रोज, तो हमारी वृत्तियां चेंज हो जाएंगी। और वृत्तियां अगर चेंज हो गई, हमारा व्यवहार चेंज हो जाएगा, और व्यवहार चेंज हो गया तो संगठन एक हो जाएगा। क्योंकि व्यवहार ही संगठन को तोड़ रहा है। अगर कोई का व्यवहार ठीक नहीं है, बोलचाल भाषा ठीक नहीं है, अगर कोई एक दूसरे को सम्मानजनक बोल नहीं बोलता है, तो क्या होगा? संगठन एक रहेगा? अगर संगठन का नाम रोशन करना है, अगर बाबा का नाम रोशन करना, जो बाबा ने कहा ना, बाबा को प्रत्यक्ष कहने के पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो। स्वयं को प्रत्यक्ष कहना माना हमारा संगठन प्रत्यक्ष हो। स्वयं अकेले प्रत्यक्ष होंगे क्या? हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे योग कर रहे हैं, बहुत अच्छी धारणाएं हमारी हैं, हमारे एक से क्या होगा? अगर हमारे अच्छे वाइब्रेशन संगठन में फैल जाएं, तो संगठन से बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। और संगठन तभी एकमत हो सकता है जब हम विचारों को मिलाना सीखें, जब हम व्यवहार शुद्धता सीख लें, जब एक दूसरे को रिगार्ड सम्मान देना सीख लें, जब हमारा नम्र चित मधुर व्यवहार हो, निर्मल वाणी हो, निमित्त भाव हो, तब हमारा संगठन एकमत बने। इसलिए इस बार जब विदेश की बहन बाबा से मिल रही थी, तो बाबा ने कहा कि 6 नहीं दिखाई दो, 1 दिखाई दो। इतने विचार मिल जाने चाहिए। अगर हम सभी ऐसे जहां भी रहते हैं, हम एक हैं, एक बाबा के हैं, इतना अंदर से एक विचारधारा हमारी बन जाए, तो हमारा संगठन बाबा को प्रत्यक्ष कर देगा। इसलिए हम सब अपनी वृत्तियों से वाइब्रेशन बनाएं और वाइब्रेशन से शक्तिशाली वायुमंडल बना दें, जिस वायुमंडल में कोई भी आत्मा आए उसको अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे। जैसे इस धरनी पर कोई भी आ जाए तो बोलता है बहुत अच्छा वायुमंडल है, बहुत शांति है, बहुत प्यार है, बहुत शक्ति है, बहुत अच्छे अनुभव होते हैं यहाँ पर। बाबा की तपस्या तो है, बाबा का त्याग तो है, बाबा की वृत्तियों का वायुमंडल तो बना हुआ है। हम सभी भी बाबा के कार्य में सहयोगी बने। ओम शांति।
बाबा हमको नया जीवन दिया है।